Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Tat Sat. Tau Tattvam Na Janami Kidrushosi Maheshwara Yadrushosi Mahadeva Tadrushaya Namo Nama Yo Asau Soaham Yajami Om Tat Sat Brahmane Nama Jagratadi Kreonumuktam Jagratadi Mayam Tatha Omkareksu Samvedyam Yatpadam Tannamamyaham. Mandukya Upanishad में पिछले कुछ दिनों से हम ऋषियों द्वारा अनुभूत और निर्दिष्ट जीव का सही स्वरूप क्या है इस संबंध में थोड़ी चर्चा और चिंतन करते रहे. निष्कर्ष रूप से बात इतनी ही है कि सत्य चित आनंद सही स्वरूप है और दुख जितने भी हैं वो आरोपित हैं. जितने भी दुख हैं वो स्वरूप को ना जानने के कारण है अथवा इस स्थूल शरीर से तादात्म्य स्थापित कर हम जागृत अवस्था का अनुभव करते हैं. इस सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य स्थापित कर हम स्वप्न अवस्था का अनुभव करते हैं और अज्ञान से तादात्म्य कर हम सुषुप्ति का अनुभव करते हैं. इन तीनों ही अवस्थाओं में सत्य से हम दूर रहते हैं. जागते हुए हम इंद्रियों की तृप्ति के कारण सत्य की ओर नहीं जाते. स्वप्न में वासनाओं के कारण हम सत्य की ओर नहीं जाते. सुषुप्ति में अज्ञान के कारण हम सत्य की ओर नहीं जाते. तीनों ही अवस्थाओं में सत्य से वंचित रहते और एक श्रुति में ये बात कही गई कि वास्तव में जो तत्व है वो ना सोता है ना जागता है ना स्वप्न देखता है. उसे ही आत्मा कहते हैं. आत्मा इन तीनों अवस्थाओं का प्रकाशक है. आत्मा इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी है. इन तीनों अवस्थाओं को जानने वाला है. स्वयं वो न सोता है न जागता है न स्वप्न देखता है और वही अपना सही स्वरूप है. अगर ये बात अनुभव में आ जाए तो फिर हमारा जीवन सफल हो जाए. अब ये सब जानते हुए भी कि आत्मा अमर है अजर है आत्मा निर्लिप्त है आत्मा में कोई दुख नहीं फिर भी सब दुखी हैं ऐसा क्यों. ये जानते हुए भी कि सुख का रास्ता ये है फिर भी हम दुख की ओर भागते हैं, ऐसा क्यों? साधना की कमी। साधना क्या है? देखो, इसका जितना सुंदर निरूपण श्रीमद् भागवत गीता में किया गया है कि हम क्यों नहीं असलियत को जान पाते, हम क्यों नहीं जीवन में तत्व से एकाकार होकर अमरत्व को प्राप्त होते, उपनिषदों में भी वही बात कही गई है, लेकिन भगवत गीता ने भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वही उपनिषदों की बात, उपनिषद जीवन की संभावनाएं हैं और भगवत गीता उन संभावनाओं को यथार्थ रूप देती है कि जो संभावनाएं हैं वो सचमुच में जीवन में चरितार्थ हो जाए, हम उसको अपनाए हैं तो जो उपनिषदों में कहा गया है उसका अनुभव हो जाए। श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय के आखिरी पांच श्लोक, उनमें सारी साधनाओं का सार है और जीवन की सफलता का रहस्य है। अगर कोई भी व्यक्ति उनको अपनाकर जीवन में अपने आप को नियंत्रित करता हुआ अध्यात्म के रास्ते पर चले तो सफलता निश्चित ही है। ये प्रसंग तो शुरू होता है अर्जुन के एक प्रश्न से। अर्जुन भगवान से ये प्रश्न करते हैं कि क्यों अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापम चरसि पुरुष अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलाद् इव नियोजित। क्यों व्यक्ति जानते हुए भी और ना चाहते हुए भी कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसे पाप की ओर ले जाती, बलात् इव, जबरदस्ती जैसे घसीट कर किसी को कोई ले जाता है, अर्थात कौन सी वो शक्ति है जो हमें सत्य से वंचित कर देती। जब ये कहा जाता है कि क्या ऐसा है जो हमें पाप में नियुक्त करता है, तो उपनिषदों की भाषा में तो पाप एक ही है, स्वरूप को ना जानना, दूसरा कोई पाप ही नहीं, दोष एक ही है, स्वरूप को ना जानना, अज्ञान का नाम स्वरूप को ना जानना, नरक क्या है स्वरूप को ना जानना, उपनिषदों में कोई दूसरा वाक्य ही नहीं। जितनी भी मुसीबतें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितना कुछ भी आप नेगेटिव कह लो या माया कह लो, पूरा माया का क्षेत्र क्या है, स्वरूप को ना जान। जिसने जान लिया उसके लिए ना कोई माया है, ना कोई दुख है, ना कोई काम क्रोध है, ना कोई शत्रु है, ना कोई अपना है, ना बेगाना। लेकिन उसी बात को जिसको उपनिषदों की भाषा में स्वरूप ना जानना कहते हैं, स्मृतियों में और पुराणों में उसे पाप वृत्ति कहा गया। तो यहां अर्जुन का ये जो प्रश्न है कि अथ केन प्रयुक्तो, कौन सा ऐसी शक्ति है जो हमें पाप की ओर ले जाती, अर्थात उस तत्व को नहीं जानने देती जो हर समय अपने पास है, कहीं ये भी नहीं कि बाहर जाना है, भी हमारे में, पास भी हमारे में है, जानते भी हम उसको हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी उससे हम एक नहीं हो पाते। उपनिषद ने उसका रास्ता कि क्यों हम उसको नहीं जान पाते, ओंकार का ठीक से ज्ञान ना होना। वो कहेंगे ओम को ठीक से जान लो तो आप पार हो जाओ। उस ओम में वो आ ऊ और मा, इन तीन मात्राओं को लेकर सारी व्याख्या कर देंगे पूरे के पूरे शास्त्र की, जिसकी गीता के इन श्लोकों ने सीधे सीधे शब्दों में व्याख्या की। अर्जुन के ये पूछने पर अब देखो, हम ये दो तीन दिन जो रह गए इसमें साधन की बात कर रहे हैं। साध्य क्या है वो आज तक किया। साध्य बहुत अच्छा है, बातें भी बहुत अच्छी हैं, जितनी भी हम सुनते रहें अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि वो जो अच्छा है वो प्राप्त कैसे हो, क्योंकि इसके ओर कभी हमने प्रयत्न भी नहीं किया और किसी को उसकी जरूरत भी नहीं, इसलिए वहां तक पहुंचना भी मुश्किल है। लेकिन फिर भी शास्त्र की मर्यादा अनुसार हमें उसके साधन का उल्लेख या चिंतन करना ही है कि क्यों नहीं वहां तक पहुंचे। और देखो ये जो प्रश्न है अर्जुन का कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमें सत्य से विमुख कर देती है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमें जबरदस्ती पाप की ओर ले जाती है, ये प्रश्न दुनिया की लगभग सभी जातियों में, सभी सभ्यताओं में सभी ने ये प्रश्न उठाया और सभी धर्म गुरुओं ने, सभी दार्शनिकों ने अपने अपने ढंग से उसका जवाब भी दिया है। जो द्वैतवादी हैं, बहुत से धर्म तो ऐसे हैं जो शक्तियां ही दो मानते हैं। क्यों पाप की ओर चलते हैं, वो कहते हैं एक शैतान है, एक खुदा है और एक शैतान। शैतान पाप की ओर हमें लगाता है, खुदा अच्छाई की ओर लगाता है, तो दोनों आपस में लगे हुए हैं। उन्होंने तो इस बात को इस तरह से कह के बात खत्म कर दी। तो हमें इन दोनों का झगड़ा है और ये बात बहुत अधिक ईसाई धर्म में भी यही है, गॉड एंड सैटन। तो इस तरह से जिन्होंने कभी वो मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट पढ़ा हो तो उसमें शैतान और ईश्वर का झगड़ा बड़े ठीक ढंग से दिखलाया गया कि कैसे। तो और धर्मों ने तो इसको ये कह के टाल दिया कि बुराई की ओर ले जाने वाला शैतान है और इसलिए हम बुराई करते हैं उसके प्रभाव में आकर। लेकिन यहां पर भगवान कृष्ण बहुत व्यवहारिक और बहुत सीधी सी बात कह रहे हैं। उसके इस प्रश्न पूछने पर वो सीधी सी बात कहते हैं कि काम एश, क्रोध एश, रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा विधे एनम ही वैरिणम। ये काम ही है जिसको क्रोध कहते हैं, वो भी काम ही है। काम की पूर्ति ना हो तो क्रोध पैदा होता है और फिर आदमी क्रोध में कुछ भी करता रहता है, अपने आप भी दुखी रहता है, दूसरों को भी दुखी रखता है। तो उन्होंने इस बात को काम कह के ही खत्म कर दिया कि जहां कहीं भी असफलता है हमारी, क्योंकि हमारी रुचि काम की ओर है, इंद्रियों की तृप्ति की ओर है, मन की वासनाओं की तृप्ति की ओर है, हमारी रुचि सत्य को जानने की है ही नहीं। और जब तक ये बनी रहेगी, संसार की कोई शक्ति भी ऐसी नहीं है जो हमें तत्व तक ले जाए। देखो गीता का ये वाक्य हमेशा याद रखे जो कोई भी साधक है, कि काम को उन्होंने महाशनों का मतलब होता है जिसकी भूख कभी मिटे ही ना, जितना देते चले जाओ और खाता चला जाए। अग्नि से इसकी तुलना की गई, आग में जितनी भी आहुतियां देते चले जाओ वो भड़कती चली जाएगी जब तक कि आग भी खत्म ना हो जाए और घी भी खत्म ना हो जाए। आज के युग में बहुत प्रचार हुआ है इन बातों का कि काम की पूर्ति होनी चाहिए, नहीं तो लोग बीमार हो जाते हैं, नहीं तो ये हो जाता है। लेकिन आज तक काम की पूर्ति के बिना कोई मर गया हो या कोई पागल हो गया हो देखा नहीं गया। जितने भी पागल हुए हैं या मरे हैं वो कामासक्त ही मरे और पागल भी वही हुए। लेकिन कुछ आचार्यों ने, कुछ लोगों ने आज के युग में थोड़ा मनोविज्ञान का सहारा लेकर के काम की पूर्ति होनी चाहिए, काम नहीं तो बीमारियां फैल जाएंगी, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो विकृति हो जाएगी। उनसे कोई भी पूछे कि विकृति वालों में कभी कोई मीरा का नाम, नानक का नाम, बुद्ध का नाम किसी का तो बतलाओ कि इनमें कोई विकृति हुई हो। तो जितना जितना ब्रह्मचर्य से हटते चले जाएंगे उतना उतना पतन की ओर गिरते चले जाएंगे, इसमें उम्र का कोई सवाल नहीं। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि सारी मुसीबतें कहां से हुई, केवल एक ही शब्द, कामेश, क्रोधेश। जो काम है वही क्रोध है, क्योंकि क्रोध कभी होता ही नहीं काम के बिना। काम की पूर्ति ना हो तो क्रोध होता है, नहीं तो क्रोध का कोई अर्थ नहीं। दूसरे अध्याय में बहुत ही ठीक ढंग से ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषोपजायते, वहां से उन्होंने शुरू किया कि विषयों का चिंतन करने से ही पतन के सड़क पर हम चल पड़े। इनका चिंतन होते ही समझो हम ऐसी सड़क पर चल पड़े जो सत्य के विपरीत है, हम कभी सत्य तक या सुख तक पहुंच ही नहीं सकते। यहां पर भगवान उसी बात को यहां पर दोहरा रहे। ये जो तीसरे अध्याय के आखिरी पांच श्लोक हैं, अर्थात 39, 40, 41, 42, 43 वाला, ये थोड़े विचारणीय हैं। यही उस उपनिषद का ही नहीं, सभी उपनिषदों का साधना पक्ष है। यहां पर वो ये कह रहे हैं कि आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। आवृतम ज्ञानम एतेन, इस काम ने क्या किया हुआ है, ज्ञान को आवृत कर दिया। ज्ञान का मतलब सत्य चित आनंद, आपकी आत्मा। आत्मा क्यों नजर नहीं आती और विषय क्यों नजर आते हैं, वो कहते हैं कि आत्मा को ढक दिया है इस काम ने। आवृतम ज्ञानम एतेन, इसके द्वारा ज्ञान आवृत हो गया। और उस पर उन्होंने बतलाया जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, अग्नि वही है लेकिन धुआं है, आत्मा वही है लेकिन मन रूपी वासनाएं धुआं है, वो उसको ढक देती है, आत्मा नजर नहीं आता। जैसे शीशे को मट्टी ढक देती है, जैसे गर्भ को जेर की झिल्ली ढक देती है, ऐसा ऊपर एक श्लोक में उन्होंने बतलाया। मुख्य बात केवल इतनी है कि आवृतम ज्ञानम हेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना, ये जो काम है ये साधकों का नित्य वैरी है। नित्य वैरी का अर्थ होता है, देखो जो साधक नहीं है उनका ये नित्य वैरी नहीं है, क्योंकि काम के भोग के समय ये उनको अपना मित्र लगता है, बड़ा अच्छा है, ये बाद में वैरी लगता है। तो जो साधक नहीं है उनका तो ये भोग के समय मित्र है। नित्य वैरी का मतलब होता है भोग के समय भी वैरी है, उसका चिंतन करते हुए भी वैरी है और बाद में भी वैरी। ज्ञानी तो ये जानता है कि इसमें दुख ही दुख है लेकिन फिर भी कभी न कभी फंस जाता है, संभावना है फंस जाने की। कदम इंसान का राह दहर में थर्रा ही जाता है, चले कोई बच के कितना फिर भी ठोक कर खा ही जाता है, कहीं ना कहीं फिर भी गिर ही जाता है। लेकिन साधक के लिए, साधक के लिए तो ये नित्य वैरी, जिसको पता हो अपने शत्रु का और फिर भी वो उसके पीछे जाए, वो साधक नहीं है, साधक कहलाने का हकदार भी नहीं। उसको कभी भी इस बात भूल कर भी नहीं सोचनी चाहिए कि मैं साधना में सफल हो जाऊंगा। और रजनीश को पढ़ के या और इस तरह के आचार्यों को पढ़ के कोई सोचे कि इसमें नहीं तो विकृतियां हैं, वो हैं, ये है, ऐसा है, कोई एक भी साधक आपको दुनिया का नहीं मिलेगा जो काम का भी साथी हो और राम तक भी जा पहुंचे। सभी ने काम और राम को दोनों एक ठाव पर रह नहीं सकते कभी भी। जैसे सूरज और रात का कोई आपस में मेल नहीं है, ऐसे ही काम और राम का भी कोई आपस में मेल नहीं। लेकिन ये मिलते जुलते इतने हैं आपस में कि इनमें भेद कर पाना मुश्किल है, क्योंकि कृष्ण का बेटा ही काम है। कृष्ण के प्रद्युम्न उनका बेटा काम का ही अवतार, और उसके लिए भागवत में कथा आती है कि जब वो पहुंचता है वहां कामरति के साथ द्वारका में, तो कृष्ण की पत्नियां भी ये पहचानने में भूल गईं कि ये कृष्ण है स्वयं या उनका बेटा। तो मिलते जुलते बहुत हैं ये दोनों आपस में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ज्ञान ही एक वो आपके पास यंत्र है जो इनको अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखला देगा। तो आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ये ज्ञानियों का, साधकों का, भक्तों का, सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों का तो ये नित्य वैरी है। और ये काम रूप नाम भी उसका बतला दिया, कौन नित्य वैरी है, ये काम। और दुष्पूरेन, ये कभी इसकी पूर्ति नहीं होती। जैसे अनिलेन, जैसे आग कभी भी शांत नहीं होती आहूतियां डालने से और प्रज्वलित होगी, वैसे ही ये। और उसका कारण उन्होंने ऊपर बतला ही दिया, रजोगुण समुद्भवा। ये कारण नहीं बतलाया कि भाई कोई शैतान है या माया इसको का चक्र है, ऐसा कुछ नहीं। वो कह रहे हैं रजोगुण को, एक बहुत ठीक तरह की बात जो हमारे ऋषियों ने वर्षों पहले सोची, प्रकृति और प्रकृति के तीन गुण, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति के तीन गुण हैं। और ये तीनों के तीनों गुण ही जीवन का अधिक संचालन करते हैं। शास्त्र हमारे उपनिषद, बाकियों की बात नहीं मैं कर रहा, उपनिषद इन तीनों गुणों से ऊपर उठने की बात करते हैं, गुणातीत। बाकी जितने भी ग्रंथ हैं वो इन तीनों गुणों में सामंजस्य, बैलेंस बना के चलो। बैलेंस बना के चलो वाली बात अच्छी लगती है, सुनने में भी अच्छी लगती है, क्योंकि सारे व्यवहार भी चलेंगे, कारोबार भी चलेगा, काम का भोग भी करेंगे और राम भी मिल जाएगा। लेकिन ये कभी आज तक हुआ नहीं। ये बात सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमने इन दिनों में उपनिषद का चिंतन किया है और उपनिषद समझौता नहीं करता कि उपनिषद आपको ये ढंग बतलाए कि बाल बच्चे भी पलते रहें और उनके बीच में भी मैं रहूं और घूमते फिरते सारे हम मोक्ष को भी प्राप्त हो जाएं, ये उपनिषद नहीं कहेगा। ये और कथाएं हैं बहुत सी, उनका हम अध्ययन करें तो ये बातें मिल जाएंगी। उपनिषद गुणातीत की बात करते हैं, गुणों में सामंजस्य स्थापित करने की बात नहीं करते। व्यवहार चलाने के लिए समृतियां हैं, मनु समृति है, प्राचर समृति है, वो समृति। पौराणिक कथाएं हैं व्यवहार चलाने के लिए, वो सब बाकी सब ग्रंथ हैं उपनिषदों को छोड़कर, क्योंकि उपनिषद तो व्यवहार जो संसार को ही स्वप्न समझा रहे हैं, व्यवहार का है। स्वप्न का व्यवहार क्या, स्वप्न में हमने बहुत बढ़िया व्यवहार कर लिया या बुरा, स्वप्न का संत और स्वप्न का डाकू दोनों बराबर के हैं, क्योंकि जाग गए तो न डाकू है न कोई। तो उपनिषद समझौता नहीं करते, लेकिन बात को समझने के लिए एक सहारा देते हैं। ये बात अच्छी लगती है कि सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, कभी इस गुण में, कभी उस गुण में, कभी उस गुण में झूला झूले, बड़ा आनंद आता है, कभी सो गए, कभी उठ बैठे, कभी स्वप्न देख लिया। इसी को सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण कहते हैं। जागृत को सत्वगुण कहते हैं, स्वप्न को रजोगुण कहते हैं, सुषुप्ति को तमोगुण कहते हैं। और हम जिस तत्व की बात करते रहे हैं उन तीनों गुणों से परे, जिसको तुरीय कहा बार बार, जिसके लिए आपने अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम ऐसी ऐसी बातें कही, वो इन गुणों की पकड़ में नहीं। ये कोई भी गुण ना उसको छू तक नहीं सकता। जब हम उससे अलग होकर इनमें आ जाते हैं, इस झूले में, या सीधा सा शब्द का प्रयोग करो, जब हम वासनाओं में आ जाते हैं, तो फिर हमें ये ग्रंथ और ये बातें अच्छी लगती है। मुख्य बात मैं आपसे ये कहना चाहता था कि ये तीनों ही गुण सारा कुछ सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, और गीता में भी ये कहा, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सचित्, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, तू अलग हो जा, आत्मा की तरफ ध्यान दे। गुणों के साथ तादात्म्य करके तू अपने आप को सुखी दुखी ना मान।